ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज में भागवतम स्कंद 9 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या है 1 से 6। तो 1 से 6 श्लोक है, उसमें 1 से 5 श्लोक तक का तात्पर्य नहीं है। छठे श्लोक का तात्पर्य है, तो हम पहले 1 से 5 श्लोक का अनुवाद में पढ़ूंगा, उसके बाद छठा श्लोक हम साथ में रिसाइट करेंगे। श्लोक पहला है, इस अध्याय का नाम है भरत का वंश, तो भरत महाराज के वंश के बारे में बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि मरुदगण ने भरद्वाज को लाकर दिया था, इसलिए वह वितथ कहलाया। वितथ के पुत्र का नाम मन्यु था, जिसके 5 पुत्र हुए, बृहत क्षत्र जय महावीर नर तथा गर्ग। इन 5ों में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। श्लोक संख्या 2। हे महाराज परीक्षित, हे पांडु वंशज, संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंती देव। रंती देव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 3, 4 और 5। रंती देव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया, उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वह हर वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को अति कष्ट सहना पड़ा। वह तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से गंभीर रहते थे, फिर भी रंती देव धीर बना रहता बने रहते होना चाहिए। एक बार 48 दिनों के उपवास करने के बाद रंती देव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। तो अब है श्लोक संख्या 6। तस्मै समन्य भजत्सो अन्नमादत्य श्रद्धयान्विता हरिम सर्वत्र संपश्यन् भुक्त्वा प्रययो द्विजा तस्मै सम्यभजत्सोन्नम् आदृत्य श्रद्धयान्विता हरिम सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजा तस्मै सम्यभजत्सोन्नम् आदृत्य श्रद्धयान्विता हरिं सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विजा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला भे चरणामृत भक्तिदान स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। तस्मै उस ब्राह्मण को संव्यभजत, बांट कर अपना हिस्सा दे दिया। सह उसने अन्नम भोजन, आदत्य आदर पूर्वक, श्रद्धया अन्वितः अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, हरिम भगवान को सर्वत्र सभी जगह हर जीव के हृदय में संपश्यन देखते हुए, सह वह भुक्त्वा भोजन करके, प्रययो उस स्थान से चला गया। द्विजह ब्राह्मण। अनुवाद। चूंकि रंती देव को सर्वत्र एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का आभास होता था, अतएव वह बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करते और उसे भोजन का एक अंश देते थे। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। तात्पर्य, रंती देव को हर जीव में भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वह कभी यह नहीं सोचता था कि चूंकि भगवान हर जीव में है अतएव हर जीव भगवान है। इसी तरह वह जीव जीव में भेद नहीं मानता था। उसे ब्राह्मण तथा चांडाल दोनों में भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। यह असली समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे हविगस्तिनी शुनिच विश्वपाक च पंडित समदर्शिन। असली ज्ञान होने से विनीत साधु विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण गायें हाथी कुत्ते तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखता है। यद्यपि आजकल तथा कथित दरिद्र नारायण को वरीयता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंती देव के पास किसी एक को वरीयता देने का कोई कारण नहीं था। यह विचार कि चूंकि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के हृदय में उपस्थित हैं, अतएव गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए, भ्रांत धारणा है। ऐसे तर्क से तो कूकर सूकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि भगवान उन सबों के हृदय में भी रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंती देव की विचारधारा ऐसी थी। वे तो हर एक को भगवान का अंश मानते थे, हरि संबंध वस्तुना। ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान है। ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है, जो सदा भ्रामक हैं, और रंती देव ने उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो मैं सही भक्तों से आशीर्वाद याचना करना चाहूँगा ताकि मैं इस भागवतम के इस प्रसंग पर कुछ बोल सकूँ, और भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये अध्याय चल रहा है अभी, भरत महाराज का वंश। और इस भरत महाराज के वंश में एक बहुत बहुत महान भक्त और बहुत महान राजा हुए हैं, जो हैं रंती देव। तो उनके बारे में यहाँ चर्चा चल रही है, उनके चरित्र के बारे में कि कैसे वो बहुत बड़े दानवीर थे, अपना खुद भी तपस्या करके खुद भी मुश्किल लेकर वो सब ब्राह्मणों को, और हम आगे देखेंगे कैसे चंडालों तक को भी वो अपना भोजन का हिस्सा देते थे। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो समदृष्टि कैसे रख थी रंती देव की, तो असली समदृष्टि क्या है, चलो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। एक और जगह भागवतम में भी छठे स्कंद में प्रभुपाद बताते हैं कि समदृष्टि जो है वो चाणक्य पंडित बताते हैं कि आत्मवान सर्वभूतेषु, कि समदृष्टि वही है, पंडित व्यक्ति वही है जो हर व्यक्ति को उसी तरह ट्रीट करे, उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करे जैसा वो खुद चाहता है कि मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा वो पंडित है। हमको सबको उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, तो इसलिए हमको हर किसी को आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद छठे स्कंद के सातवें अध्याय के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में बैठे हैं, इसलिए हमको हर किसी को आदर देना चाहिए, एक भगवान के मंदिर के समान। जैसे भगवान के मंदिर को हम आदर देते हैं, ऐसे हर किसी के अंदर भगवान हृदय में भगवान बैठे हैं विराजमान है, इसलिए हम उनको सबको आदर देना चाहिए। और जब हम सबको ऐसे समान समदृष्टि रखते हैं, सबको ऐसे आदर देते हैं, तो जैसे भगवत गीता में ही भगवान यहाँ बताते हैं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी हविग्रस्तिन, जो पंडित होता है वो एक ब्राह्मण को भी, एक हाथी को भी, एक कुत्ते को भी, और कुत्ता खाने वाले को, सबको भी समान देखता है। और ऐसा समान देखता है तो उससे क्या होता है, समान देखने से, वो इसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं गीता में कि जब ऐसे समान देखता है वो हर किसी को, सो वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है ना, और वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सबको सम दृष्टि रख सकता है, सबको समान देख सकता है। भगवान चौथे स्कंद में बताते हैं कि जब ध्रुव महाराज यक्षों पर आक्रमण करते हैं और स्वयंभू मनु आते हैं उनको रोकने के लिए, तो वो उनको बताते हैं, स्वयंभू मनु तो उनको बताते हैं कि भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं अपने भक्तों से जब उनके भक्त और लोगों को, सब जीवों को, साधारण जीवों को उनको ट्रीट करते हैं टॉलरेंस के साथ, बहुत ज़्यादा सहनशीलता के साथ, मर्सी कृपा के साथ, फ्रेंडशिप दोस्ती के साथ, और इक्वलिटी यानी समदृष्टता के साथ। जब हम सब जीवों को ऐसे हम व्यवहार करते हैं, टॉलरेंस, मर्सी, फ्रेंडशिप और इक्वलिटी, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उसे, लॉर्ड इज वेरी सेटिस्फाइड, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं ये देखकर कोई जीव अगर ऐसा व्यवहार करता है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये समानता, ये समदृष्टा हम अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं। जय श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, जगत कुशल प्रभुपाद की जय। ये समदृष्टता हम अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, तो ये समान व्यवहार रखना, इक्वलिटी या समदृष्टा रखना, ये अलग अलग स्तर पर हो सकता है, अलग अलग स्तर पर हम समझ सकते हैं। एक स्तर है शरीर का स्तर और एक स्तर है आत्मा के स्तर पर, प्रभुपाद ने इसकी चर्चा करी है तात्पर्य में भी। तो शरीर के स्तर पर भी हम समानता रखने का प्रयास कर सकते हैं और करते हैं समाज में अलग अलग तरीके से। समाज में ऐसा प्रथा आता है कि लोग बोलते हैं कि हमें कि कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का नहीं होना चाहिए, कोई अलग अलग कास्ट नहीं होना चाहिए, अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जब रशिया गए मॉस्को, तो कोटोस्की, प्रोफेसर कोटोस्की से मिले और उनसे चर्चा कर रहे थे कि सोशलिज्म जो साम्यवाद है उसके बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, तो प्रभुपाद उनको बोल रहे थे कि ये क्लास जो है, ये जो अलग अलग वर्ग हैं समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो हर जगह उपस्थित होते हैं। कोटोस्की कहते हैं नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं है, हम समाज में सबको समान देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके समाज में कोई ना कोई एक व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति हुए जिसको सब लोग पालन करते हैं, उसका नाम लेनिन या स्टालिन के नाम से जानते हैं, तो कोई ना कोई लीडर होते हैं। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो कुछ अन्न को उगा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं सबके अंडर, तो ऑटोमेटिकली हर समाज में ये होता ही है। कुछ लोग होंगे जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो ब्राह्मण, कुछ लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ होंगे जो क्षत्रिय, कुछ लोग होंगे जो व्यापार करेंगे या फिर गाय की रक्षा करनी चाहिए वो वैश्य, और कुछ लोग होंगे जो सबको बस फॉलो करना चाहेंगे वो शूद्र। तो वो हर समाज में उपस्थित होता ही है, हम चाहें या ना चाहें उसको, लेकिन वो हो गई। प्रोफेसर उसमें एग्जांपल देते हैं प्रोफेसर कोटोस्की को, जैसे कि सूर्य है हमेशा हर जगह वो विद्यमान है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन सूर्य तो होगा। उसी तरीके से समाज में विभाजन तो है, हम उसको चेंज करना चाहें ना करना चाहें, उसको चाहें या ना चाहें, वो तो रहेगा समाज में विभाजन। लेकिन जब इसको आर्टिफिशियली रोकने का प्रयास किया जाता है तो फिर ये चीज़ें आती हैं, कम्युनिज्म के नाम पे ऐसी चीज़ें आती हैं या फिर और ऐसे संप्रदाय और ऐसी इंस्टीट्यूशन शुरू होती हैं। तो ये एक तरह का हम समानता समदृष्टा लाने का प्रयास करते हैं जब शरीर के स्तर पर, जो है कि हम शरीर समाज में सब एक वर्ग में लाना चाहते हैं, सबको इक्वालिटी लाना चाहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होगा, समाज में सब आलसी बन जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं कितना भी पैसा कमाऊंगा लेकिन मेरे को मिलने वाला नहीं है, या कोई कुछ भी नहीं कमा रहा उसको भी पता है मुझे सब कुछ मिल जाएगा मुझे, तो कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए इसका ये परफेक्ट स्तर पर नहीं हो पाता जब ऐसा इक्वलिटी, ऐसा समदृष्टा हम रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा हम प्रयास करते हैं समाज में समान दृष्टि रखने का स्त्री और पुरुष के बीच में, बहुत ज़्यादा चर्चा आती है इसके बारे में समाज में, कि स्त्री और पुरुष को समान दर्जा मिलना चाहिए, जो पुरुष को दर्जा मिल रहा है वो स्त्री को मिलना चाहिए, जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री करना चाहिए, सब कुछ वही सब का होना चाहिए, कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद का बहुत सारे फेमस कन्वर्सेशन हुए इसके ऊपर, और स्पेशली प्रभुपाद तो बहुत पॉपुलर हो गए इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन था कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और उसी समय भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, स्त्रियां जो हैं उनको सबऑर्डिनेट रहना चाहिए पुरुष के, अपने हस्बैंड के, अपने पति के। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं प्रभुपाद से तर्क करने के लिए। तो एक ऐसी रिपोर्टर आई, लेडी रिपोर्टर, जो प्रभुपाद से बोलने लगी कि आपका क्या विचार है स्त्रियों के बारे में, तो क्या वो इन्फीरियर होती हैं, क्या वो पुरुषों से वो इन्फीरियर होती हैं। तो प्रभुपाद ने कहा जो स्त्रियाँ हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, वो निर्भर हैं अपने पति के ऊपर। अब आप इसको सिर्फ इन्फीरियर समझना चाहो, जो समझना चाहो, लेकिन वो सबऑर्डिनेट हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि हर किसी का अलग अलग फीचर है बॉडी का, किसी का बॉडी कैसा है, किसी का बॉडी कैसा है। जो स्त्री का बॉडी है किसी और कार्य के लिए बना हुआ है, पुरुष का बॉडी किसी और कार्य के लिए बना हुआ है। जैसे होती है स्त्री होती है वो गर्भवती होती है, पुरुष गर्भवती नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो सबका शरीर अलग अलग बना है। तो आप इक्वल कैसे कर सकते हो, इक्वल हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप पुरुष गर्भ धारण कर सकता है, नहीं तो कैसे इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन वो रिपोर्टर बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी इस चीज़ को, उसने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता। उसने कहा कि अच्छा आप स्त्रियों को सबॉर्डिनेट रखना चाहते हो, उनको नीचे रखना चाहते हो। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, उसको सबॉर्डिनेट रहना पड़ेगा अपने पति के, क्योंकि अगर वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी अपने पति के तो जब उसका वो गर्भवती होगी तो उसको आश्रय चाहिए होता है, उसको सहारा चाहिए होता है, तो पति का उसको सहारा चाहिए। तो लेडी रिपोर्टर कहती है कि नहीं, कुछ स्त्रियाँ होती हैं वो उसको सहारा नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, फिर वो पति का सहारा नहीं लेंगी तो वो गवर्नमेंट का सहारा लेंगी, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ता है ना। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे सिंगल मदर्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस करते थे, तो किसका बर्डन आया, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आया, तो किसी ना किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो प्रभुपाद बताया उनको इसलिए बेटर है वो पति के डिपेंडेंट होंगे तो वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो ये अननेसेसरी को बिना सोचे समझे इसको हम इक्वलिटी करने का प्रयास करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि है नहीं इक्वल, हर कोई अलग अलग है, स्त्री को अलग बनाया है, पुरुष को अलग बनाया है, तो इसलिए अलग हैं। और जब इसको करने का प्रयास करते हैं कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, तो समाज में वर्ण शंकर आते हैं, जो अर्जुन बता रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में ना, कि जब ऐसा हम श्रीशु दुष्टाशुवारषणे या जायते वर्ण संकर संकर, कि जब हम इक्वल सबको राइट देंगे, स्त्रियों को भी इक्वल राइट है, वो भी जो भी करना चाहे कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, स्त्रियां प्रदूषित होंगी और वर्ण शंकर अनवांटेड पॉपुलेशन वो होगा समाज में, जो पूरा उपद्रव मचाएगा समाज के अंदर। और हम देखते हैं समाज में जो स्थिति है उसका मेन रीजन प्रभुपाद बताते हैं यही है कि समाज में बहुत सारे वर्ण शंकर हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन, इसको चाहते नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। प्रभुपाद बोलते थे कि जो सो कॉल्ड वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट है ये भी शुरू किया गया ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पुरुषों के द्वारा जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते थे, क्योंकि वो स्त्रियों को, स्त्रियां जो थी वो प्रोटेक्टेड थी अपने अपने घरों में और अपनी जगहों में, वो सुरक्षित थी, तो वो उनका शोषण नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा मूवमेंट चलाया कि वुमेन को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, घर से बाहर निकलें ताकि वो उनका शोषण कर सके। तो इसलिए इक्वालिटी आर्टिफिशियली रूप से प्रयास करें तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसका नतीजा हम देखते हैं समाज में ये सब हो सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में कैसे स्त्रियों का का रोल था और कैसे वो डील करते थे। पता है ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में वापस आ रहे हैं और सब द्वारकावासी भगवान कृष्ण का वेलकम कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सब अपने घरों के बाहर खड़े होकर अपने घरों को खूब सजा दिया है, सबने सड़कों को सजा दिया है, सब छतों को सजा दिया है और भगवान का वेट कर रहे हैं। तो फिर बता रहे हैं कि जो स्त्रियां थी वो भी भगवान का वेट कर रही थी। वो कैसे वेट कर रही थी, स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई, टेरेस पर, रूफ पर चढ़ गई। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गई और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही, उनकी उनकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी वो बनी रही, क्योंकि वो भीड़ के अंदर में नहीं गई, वो अपनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मेंटेन करके रखी, छत पे रही वो, और वहां से उन्होंने दर्शन करे भगवान के। वहां पर मनुष्य के साथ बनावटी समानता नहीं थी, एक आर्टिफिशियल समान था। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुष को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। तो अननेसेसरी हम चाहेंगे कि इक्वालिटी पैदा करने का प्रयास करें हम, कि स्त्रियों को पुरुष को दोनों को इक्वल होना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करें तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होगा, जैसे हम इस वाले में देख रहे हैं श्लोक में, उसका नतीजा ये होता है कि प्रभु बता रहे हैं कि स्त्रियों का शोषण और होता है उस स्त्रियों से। तो ये भी इक्वालिटी का प्रयास करें समाज में तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा इक्वालिटी से भी। देन उसके बाद हम इक्वालिटी, हम समानता समदृष्टा लाने का प्रयास कर सकते हैं कि सब जीवों को समान देखना चाहिए, सब जीवों को समान रूप से हमको व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी पूरी तरीके से संभव नहीं है। हो सकता है हम किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को हम बहुत अच्छे से, कोई व्यक्ति आया, हमारा कोई मित्र आया, तो मित्र को हम गले लग रहे हैं, उसको उससे हम बैठ के बात कर रहे हैं, उसको प्रसाद उसको खिला रहे हैं, उसको प्रसाद परोस कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपके सामने आपके साथ में कोई सांप आया, तो कोई शेर आया, तो आप उसके साथ वो सेम व्यवहार नहीं कर सकते ना। तो वो आपने सेम व्यवहार किया तो वो सेम व्यवहार नहीं करेगा आपके साथ, वो कोई और व्यवहार करेगा। तो इसलिए हमको अलग व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जब प्रयास करते हैं इक्वालिटी लाने का, तो प्रभुपाद बता रहे हैं जब ऐसे सब जीवों में समानता लाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं ऐसी फिलॉसफी मायावाद। जब वो कहते हैं कि सब लोग समान हैं, कैसे समान हैं, अब सबको समान तो व्यवहार नहीं कर सकते, सब समान कैसे हैं, क्योंकि भगवान सबके अंदर है इसलिए सब भगवान है ना, वो जो है गरीब भगवान है ना, दरिद्र नारायण। तो इसलिए वो ऐसे लोगों का पूजा करते हैं, ऐसे ऐसा वो कथन निकालते हैं कि वो गरीब हैं, गरीब दरिद्र नारायण है, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दरिद्र नारायण क्यों, अमीर नारायण क्यों नहीं, है ना, हम सब सभी जो हैं सभी भगवान सबके अंदर हैं, लेकिन भगवान सबके अंदर होने से हर कोई भगवान नहीं बन जाता ना, भगवान जो है सबके अंदर विद्यमान है और हम सब भगवान के अंश हैं। तो उस स्तर पर भी हम इक्वलिटी, हम समदृष्टता नहीं लेके आ सकते ना, हम समाज के स्तर पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्गों के स्तर पे हम समानता नहीं लेके आ सकते, हम स्त्री पुरुष के बीच में समानता लेके नहीं आ सकते, हम अलग अलग जो जीव हैं उनके बीच में भी समानता लेके नहीं आ सकते, और हम भक्तों में भी एक तरीके से समानता पूरी तरीके से लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हर जो भक्त है उसका अलग चरित्र है, उसका अलग स्वभाव है, उसका अलग मनोधारणा है, तो वो भी समानता नहीं आ सकती अगर हम शरीर के स्तर पे देखा जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है समानता जो यहाँ पे बताई जा रही है समदृष्टा, प्रभुपाद बता रहे हैं वो सिर्फ संभव है जब हम आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करेंगे। जब आध्यात्मिक स्तर पर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम समता समानता और समदृष्टा लेके आ सकते हैं समाज के स्तर पर भी, क्योंकि समाज में भागवत में आता पुंबी दुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनितिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरितोष्णम, कि कोई भी वर्ग है समाज का, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है, सबका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, संसिद्धिम हरितोषणम, सबको मौका है ताकि वो भगवान को वर्शिप कर सके, भगवान की पूजा कर सके, हर कोई भगवान को प्राप्त कर सके, इसी के लिए हर किसी को मौका दिया जाता है वर्णाश्रम में, इसलिए उस तरीके से हर कोई समान है, हर किसी को इक्वल राइट है ये करने का, भगवान को प्राप्त करने का। एक बार वृंदावन में अक्षयानंद महाराज थे, वो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद को बताया कि एक व्यक्ति आया है हमारे मंदिर में गेस्ट हाउस में रुकने के लिए, लेकिन उसने उसका वेशभूषा और उसका जो दिखने का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत लंबे लंबे बाल हैं, हिप्पियों जैसा वो ड्रेस्ड है, और तो बहुत ऐसे ऐसे कपड़े हैं उसके, तो प्रभुपाद ने तो उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसा वो आया है, कुछ दिन रह रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर हेडशेव करा लिया फिर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है ऐसा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट ध्यान रखना चाहिए इसका, कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ना भरें हम, क्योंकि कहीं फिर से हमारे जो मंदिरों को लोग ऐसा ना कहने लगे दे आर हिप्पी रिजॉर्ट, है ना, कि ये हिप्पियों के लिए स्थान है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहा नहीं, लेकिन अगर कोई चाहता है सुधरने के लिए तो हम रेडी हैं उनको हमारे मंदिर में रखने के लिए, यानी कोई कैसे भी कितने भी निम्न नीचे की अवस्था में हो, शूद्र हो या शूद्र से भी नीचे हो, हिप्पी जो होते हैं वो शूद्र से भी नीचे कहलाए जाएंगे मलिच्छ यवन में, उनको भी प्रभुपाद कह रहे हैं हमको मौका देना चाहिए शुद्ध होने का। तो वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक स्तर पे सबको समान मौका दिया जाता है आध्यात्मिक उन्नति करने का। तो ये है वर्गों के स्तर पर। उसके बाद आता है कैसे स्त्री पुरुष में, तो भगवान गीता में बता रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपनी पार्थ योनि हो, स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति, कि चाहे कोई स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी हो उन सबको परम गति प्राप्त हो सकती है जबकि भगवान की भक्ति में लगता है। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई किसी का कोई रुकावट नहीं है, कोई किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंडीशनिंग कंडीशन नहीं है कि ये स्त्री है तो ये नहीं लग सकता, पुरुष है तो लग सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हर कोई कर सकता है। एक बार रुक्मिणी माता जी एक बार शेयर कर रही हैं कैसे प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद लेक्चर में बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति जाए और जाकर एक मंदिर खोले ना, आप सब जाइए और एक एक मंदिर नया स्टार्ट करिए, शुरू करिए। अब रुक्मिणी माता जी थी, बहुत यंग थी, सिर्फ 16 साल की थी और बहुत उत्साहित थी, बहुत एंथुजियास्टिक थी उस समय। तो उन्होंने प्रभुपाद को हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद को बोला तो प्रभुपाद क्या स्त्रियां यानी कि गर्ल्स क्या वो भी जा सकती हैं? स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी इवन द गर्ल्स कैन गो, तो प्रभुपाद ने कहा यस व्हाई नॉट, देयर इज नो डिफरेंस। प्रभुपाद ने कहा कि नित्यानंद प्रभु के एब्सेंस में जानवा माता थी, उन्होंने पूरा खूब प्रचार किया, तो उस स्तर में स्त्रियों में और पुरुष में कोई भेद नहीं है ना? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है, प्रभुपाद ने बोला। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से लेते हैं तो हम स्त्री और पुरुष में भी समानता हम समझ सकते हैं इस चीज में, तो सबको इक्वल राइट है भक्ति में एडवांस करने के लिए, भक्ति में उन्नति करने के लिए। उसके बाद सभी जीवों में भी हम समानता कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये देखें कि सबको सबके अंदर भगवान वास करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि परमात्मा सबके हृदय में है, तो सबका को समझना चाहिए हमको कि भगवान उनके हृदय में वास कर रहे हैं, तो उसके रूप में हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हालांकि हम सबको रिस्पेक्ट सबको आदर देंगे सभी जीवों को, लेकिन सबको जो व्यवहार करेंगे वो अलग अलग होगा, वो सबको व्यवहार सेम नहीं कर सकते। हम शेर के साथ चीते के साथ और एक भक्त के साथ सेम व्यवहार नहीं कर सकते, व्यवहार हमारा अलग होगा लेकिन हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबको आदर देंगे भगवान के अंश के रूप में। प्रभुपाद बता रहे हैं तीसरे अध्याय तीसरे स्कंद के तात्पर्य में कि हमको सभी जीवों को जितने निम्न योनि में भी जो जीव हैं उनको भी दया करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वैसे ही हम व्यवहार करें जैसे कि मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं। हमको इक्वलिटी रखनी चाहिए लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए इसमें भागवतम में बताया गया कि हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए अलग अलग जीवों को भी, वही बताया गया। जब निमि महाराज को नवयुगेंद्र बताते हैं कि हमको जब अलग अलग जीवों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ईश्वरेषु तद्धिनेषु बालुषेषु द्विषत्सु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यम, कि हमको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए। भगवान को हमको प्रेम करना चाहिए, भगवान के भक्तों से मैत्री करनी चाहिए, जो इनोसेंट लोग हैं मासूम लोग हैं तो उनको प्रचार करना चाहिए, हमको भगवान के बारे में बताना चाहिए, लेकिन जो द्वेषी लोग हैं उनको उपेक्षा करनी चाहिए, उनको निग्लेक्ट करना चाहिए, उनको हमको उनका संग नहीं करना चाहिए। तो कोई कह सकता है यहाँ तो हम भेदभाव कर रहे हैं, जो व्यक्ति द्वेषी है उसको हम क्यों नहीं बता रहे भगवान के बारे में। तो उसी तात्पर्य में आगे भक्ति महाराज को कोट किया और विष्णु जगह ठाकुर को कोट किया प्रॉपर डिसेबल्स ने, तो बता रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे, उनको बता रहे वो उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, भक्त जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है वो उनके प्रति द्वेष नहीं रखता, लेकिन उनको वो बताता नहीं क्योंकि अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रचार किया तो वो और द्वेषी हो जाएगा, है ना, सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे उसका जहर और बढ़ जाएगा। तो उसको हम प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो भगवान के नाम के बारे में बताएंगे उसको तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा, वो और गलत सुनाएगा भक्तों को, वो और गलत बोलेगा भगवान के बारे में, इसलिए हम उसको प्रचार नहीं करते, उसको हमको दूर रखना चाहिए। लेकिन साथ में क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए कि ये भी भक्ति में जुड़ सकें और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो इस दृष्टि से हम समानता रख सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, समाज के वर्गों में भी, पुरुष और स्त्री में भी, और सभी जीवों के साथ भी हम समानता रख सकते हैं। और सही रूप से हम समानता कैसे रख सकते हैं, असली समानता क्या है, असली समदृष्टा क्या है, वो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवद गीता में छठे अध्याय के 32वें श्लोक में। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, ये श्लोक का अनुवाद है, हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, उसको योगी कहा गया, असली योगी। प्रभुपाद इसके तात्पर्य बता रहे हैं, कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है, जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध को विस्तरण होना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से स्वभावित से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापों को भुगत रहा है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरण करना चाहता है। तो प्रभु बता रहे हैं कि असली समानता, असली समदृष्टा क्या है कि हम ये प्रयास करें इस ज्ञान को, इस भगवान कृष्ण के भगवद गीता के ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाएं और सब लोगों तक को दें इस भगवद गीता का ज्ञान। ये असली समदृष्टता है, ये असली समानता है। गोविंद दासी माता ये बताती हैं, एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जस्ट हवाई के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे, उससे पहले प्रभुपाद ने लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद बोलने लगे और बोलते बोलते प्रभुपाद ने अपनी आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके प्रभुपाद की आंखों से आंसू टपकने लगे और प्रभुपाद ने बोला, पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, प्लीज गो एंड टीच देम, टेल देम अबाउट कृष्णा, गिव देम दिस नॉलेज बिकॉज दे आर सफरिंग, दे डोंट नो दे आर सफरिंग बट दे आर सफरिंग। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप कृपा करके जाइए, प्लीज जाइए और लोगों को बताइए इस कृष्ण भावनामृत के संदेश के बारे में। लोग दुखों से झेल रहे हैं, दुखों में पड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि वो दुखी हैं, लेकिन उनको जाओ, उनको बताओ, उनको ज्ञान दो ये कृष्ण भावनामृत का। तो आज की प्रभुपाद का ऐसा कंपैशनेट मूड था, वो हमेशा सोचते थे कैसे हम और जीवों को ये संदेश दे सकते हैं, ये भगवान के भक्ति का संदेश दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा समानता क्या है, अगर हम भगवान क्या संदेश सब लोगों तक पहुंचाएं तो ये सबसे बड़ा इक्वालिटी या सबसे बड़ा समदृष्टता होगा, हर व्यक्ति को हम प्रचार करने का प्रयास करें। और सबसे अच्छा माध्यम क्या है हर व्यक्ति को प्रचार करने का, प्रभुपाद की पुस्तकों को बांटने का, कि प्रभुपाद की पुस्तकों को हर जगह पे बांटें। अगर हम तो प्रभुपाद ने एक विजन दिया है हम सबको कि कैसे हमको प्रभुपाद की पुस्तकों को बांटना है। मैं पीछे अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था तो प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं, ये चैप्टर आता है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, उसके स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद बोल रहे हैं, सत्स्वरूप महाराज बता रहे हैं प्रभुपाद क्या चाहते थे। प्रभुपाद एम्बिशन वॉज टू रिप्लेस मंडेन लिटरेचर विद ट्रांसेंडेंटल। प्रभुपाद ने हमको टारगेट दिए, हमको मिशन दिए है कि क्या करना है, हमारे प्रचार से क्या होना चाहिए। हमको भौतिक जो लिटरेचर है, भौतिक जो भी अखबार है, जो बुक्स हैं, उसको रिप्लेस कर देना है आध्यात्मिक लिटरेचर से। प्रभुपाद ने बोला एटलीस्ट इन एवरी होम देयर शुड बी वन पीस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर, हर घर में एक न एक प्रभुपाद की बुक्स होनी चाहिए। ये हम सबका गोल है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए हम सबके लिए। ये हमको प्रभुपाद ने दिया है कि हमको ऐसा करना है। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि अगर 1% लोग भी भक्त बन गए तो पूरा विश्व चेंज हो जाएगा, अगर 1% लोग भी भक्त बन गए। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तकों को पहुंचाएं लोगों तक, बद जीवों तक पहुंचाएं। और प्रभुपाद एक ही एक लेटर में लिखते हैं, केशव प्रभु थे, उनको लेटर में लिखते हैं प्रभुपाद कि यू आर ऑल हेल्पिंग मी टू फुलफिल द ऑर्डर विच गुरु महाराज गेव मी, भक्तिश्वर महाराज ने प्रभुपाद को ऑर्डर दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम श्योर कृष्णा विल ब्लेस यू 1,000,000 times ओवर फॉर डूइंग दिस वर्क। कृष्ण आपको आपको वरदान देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, 1,000,000 times लाखों गुना ज्यादा आशीर्वाद देंगे। सत्सुर महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद हर बार लेटर में लिखते थे कि भगवान आप पे कृपा करेंगे, आप पे आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज तक प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं लिखा था कि कृष्ण 1,000,000 times लाखों गुना ज्यादा आपको आशीर्वाद देंगे। ये किसके लिए लिखा, सिर्फ जब हम प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंत में मैं एक लास्ट में एक पास्ट टाइम बताना चाहूंगा, ये पास्ट टाइम मूल प्रकृति माता जी ने बताया कि एक बार एक माता जी थी उज्ज्वल माता जी जो प्रभुपाद के रूम्स को साफ करती थी। तो एक बार रूम को साफ करा उन्होंने, प्रभुपाद एक जगह से दूसरे सेंटर चले गए थे, उनका कुछ सामान था, कुछ एक उनको नोटबुक मिली छोटी सी प्रभुपाद की, उस नोटबुक पे लिखा हुआ था हांगकांग हिल्टन के नाम की नोटबुक थी। तो वो उन्होंने वो नोटबुक एक प्रभुपाद के शिष्य थे गोप वृंदापाल प्रभु, उनको दे दी कि प्रभुपाद, क्योंकि जो भक्त है प्रभुपाद कुछ भी चीज़ मिलती थी उसको बहुत संजो के रखते थे कि प्रभुपाद का ट्रेजर है, प्रभुपाद का ये कुछ यूज़ किया हुआ चीज़ है। तो छोटी सी पुस्तक नोटबुक थी, उसको उन्होंने संभाल के रखा अपने पास। तो मूल प्रकृति माता के हस्बैंड थे गोप वृंदापाल प्रभु। तो कई सालों तक उन्होंने रखा उसको, उनको लगा खाली है शायद नोटबुक, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो उन्होंने कभी खोला भी नहीं उसको। एक दिन ऐसे वो सब जो वस्तुएं थी उनके पास प्रभुपाद की, उनको चेक कर रहे थे खोल खोल के, तभी उनके हाथ में ये नोटबुक आई। उन्होंने देखा कि उसके लास्ट के पेज पे कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने निकाला उसको, तो देखा कुछ फोन नंबर्स लिखे थे और कुछ लिखा हुआ था, प्रभुपाद ने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, और उसके बाद नीचे एक बहुत सुंदर अक्षरम, जैसे आप लोगों ने सबने देखा होगा प्रभुपाद के सिग्नेचर्स, बहुत सुंदर प्रभुपाद के सिग्नेचर है, ऐसे एरिस्टोक्रेटिक सिग्नेचर है प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद ने ऐसे कुछ यहाँ पे माता ही लिख रही है, ट्रांसेंडेंटल डूडल्स उसके फॉर्म में प्रभुपाद ने कुछ बनाया था बहुत सुंदर तरीके से। पहले उनको समझ नहीं आया क्या लिखा है, मैं फिर उन्होंने ध्यान से पढ़ा, प्रभुपाद ने उसमें लिखा था, दो बार इसको लिखा था, वो सुंदर लैंग्वेज है, प्रभुपाद ने लिखा था, सेव द वर्ल्ड फ्रॉम गॉडलेसनेस, सेव द वर्ल्ड फ्रॉम गॉडलेसनेस, कि इस संसार को बचाओ नास्तिकता से, इस संसार को बचाओ नास्तिकता से। तो ये सर प्रभुपाद का हम सबके लिए आदेश है, ये प्रभुपाद का हम सबसे एक्सपेक्टेशन है कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करें, प्रचार करें और सब लोगों तक ये संदेश को पहुंचाएं, ताकि सही समानता, सही समदृष्टता हम रख सकें और सब सब जीवों को ये भगवान का संदेश दे सकें और उनको इस दुखों से बाहर निकाल के लेके आ सकें। हरे कृष्ण। जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज में भागवतम की जय। किसी कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज दो आचार्यों का तिरुभाव दिवस भी है, एक है भूगर्भ गोस्वामी और एक काशीश्वर पंडित, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इस बुक से। चला काशीश्वर पंडित के बारे में, श्री ईश्वरपुरी ने अपने शिष्यों गोविंद एवं काशीश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु की सविनय सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी भेजा। अपने गुरु भाइयों से सेवा स्वीकार करने में संकोच करते हुए श्री चैतन्य ने अंततः इसे अपने गुरु की इच्छा मानकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। व्रज लीला में भृंगर एवं भंगुर के नाम से विख्यात गोविंद एवं काशीश्वर श्री कृष्ण के सेवकों के रूप में सेवारत हैं। सुगठित एवं बलिष्ठ काशीश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के उद्देश्य से उनके आगे आगे चलते थे और कीर्तन के उपरांत वे समस्त भक्त जन को प्रसाद परोसते थे। श्री गौर सुंदर ने श्री रूप गोस्वामी के अर्च विग्रह गोविंद जी की पूजा के नियमित काशीश्वर को वृंदावन जाने की को कहा। चैतन्य महाप्रभु से दूर होने के भय से काशीश्वर बोले, हे भगवान, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरा हृदय छलनी हो जाएगा। अपने भक्त के प्रति कृपावश भगवान गौरचंद्र ने उन्हें अपना एक अर्च विग्रह दिया जो इतना त्रुटिहीन था कि साक्षात महाप्रभु के सदृश दिखता था। गौर गोविंद नामक वह अर्च विग्रह वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण का स्वर्णिम रूप है। तब काशीश्वर पंडित गौर गोविंद एवं गोविंद जी की सेवा के निमित्त प्रसन्नतापूर्वक वृंदावन प्रस्थान कर गए। श्री साधन दीपिका में कथन है, मैं काशीश्वर पंडित की वंदना करता हूँ जिनके प्रेम एवं भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को श्री अर्च विग्रह रूप में पश्चिम भारत ले आई। आज जयपुर राजस्थान में सहस्त्रों भक्तगण द्वारा गौर गोविंद एवं गोविंद जी के मूल अर्च विग्रहों की प्रेम पूर्वक आराधना की जाती है। काशीश्वर पंडित की मूल समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री काशीश्वर पंडित की जय। उसके बाद दूसरा है श्री भूगर्भ गोस्वामी। श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित वे दोनों सर्वप्रथम व वरिष्ठतम भक्त थे जिन्होंने वृंदावन में वास किया। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के पधारने के पूर्व उन्होंने राधा गोविंद जी की लुप्त पुण्य स्थलियों को अनावृत करने का प्रयास किया। अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की अक्रामक कार्यविधि के विपरीत भूगर्भ गोस्वामी एवं लोकनाथ गोस्वामी ने आत्मसमर्पण की विनम्र शैली द्वारा श्री कृष्ण के लीलावनों की खोज की। वह सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र उनके 12 वनों भांडीर वन, काम्य वन, महावन, तालवन इत्यादि के नाम पुकारते हुए भटकते रहते और श्रीमती विंदा देवी उन वनों की पालनहारी तथा श्री कृष्ण की लीला शक्ति की एक विस्तार स्वरूप ने प्रत्येक वन की यथातथ्य स्थिति प्रकाशित कर दी। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ गोस्वामी अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे, इस कारण उनका नाम भूगर्भ, भू अर्थात भूमि, गर्भ अर्थात कंदरा, गर्भाशय गुप्त स्थान पड़ा। वे राधा गोपीनाथ की नित्य निकुंज लीला में प्रेम मंजरी अथवा भद्र लेखिका हैं। उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के समीप विराजित है। श्लोक भूगर्भ गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की श्लोक प्रभुपाद की जय।
सही बोल रहा हूँ।